Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। सिंधु नदी के तटीय इलाके में रहने वालों को एक सूट बूट पहने अंग्रेज पर शक हो गया जो उनके घरों के आसपास मंडरा रहा था। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 25वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो हम बात कर रहे थे एक सूट बूट पहने अंग्रेज की। अंग्रेज हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों पर कब्जा कर चुके थे लेकिन सिंध अभी तक उनके कब्जे में नहीं था। अंग्रेजों के कब्जे वाले इलाकों में लोगों पर अत्याचार की खबरें सिंध के लोगों के कानों तक भी पहुंच रही थीं, खासतौर पर किसानों से वसूले जाने वाले कर की खबरें। अब वे देख रहे थे कि एक अंग्रेज उनके इलाके में भी घूम रहा है जो लोगों से बात करने का बहाना तलाश कर रहा है। वो लोगों से नज़दीक होने के लिए मरीजों का इलाज कर रहा है। उसने अपना परिचय चार्ल्स नेपियर के रूप में करवाया है। वो अपने हम वतनों द्वारा हिंदुस्तानियों पर किए जाने वाले जुल्म पर खेद भी जता रहा है। वो सिंध के लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि सभी अंग्रेज बुरे नहीं हैं, बहुत से ब्रिटिश हिंदुस्तान पर ब्रिटेन के कब्जे के मुखालिफ हैं और जब वे हिंदुस्तानियों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों के बारे में सुनते या पढ़ते हैं तो क्रोधित होते हैं। नेपियर के दोस्ताना बर्ताव और दयालु स्वभाव ने धीरे धीरे सिंध के लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। नेपियर लोगों के साथ उठता बैठता था और उनमें घुल मिल गया। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों से ढोए जाने वाले माल से होने वाले लाभ की जानकारी थी जिसे सुनकर हिंदुस्तानी दंग रह जाते थे। नेपियर काफ़ी शर्मिंदगी से इन खबरों को सुनाता था और कहता था कि एक दिन हिंदुस्तानियों को आंदोलन करना चाहिए और अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति हासिल कर लेनी चाहिए। सिंध के लोगों का नेपियर पर दिन ब दिन भरोसा बढ़ता गया। उसने सिंध के नेताओं और सरदारों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। जो लोग नेपियर के अपने ही देशवासियों के खिलाफ खड़े होने पर आश्चर्य करते थे उनसे नेपियर ने कहा, पूरी दुनिया मेरा देश है, सिर्फ इंग्लैंड नहीं, और मेरा धर्म मानवता है, ईसाई धर्म नहीं। आखिरकार सिंध के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अंग्रेज़ों के कब्जे वाले सिंध के पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया। सिंध के लोगों के हमले के खिलाफ अंग्रेज़ों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। ब्रिटिश सैनिकों ने भारी तोपखाने की मदद से सिंधियों को पीछे ढकेल दिया और उनकी सीमा में प्रवेश कर गए। सिंध के लोग युद्ध के नतीजे से आश्चर्यचकित नहीं थे लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य उस अंग्रेज कमांडर पर था जिसने ब्रिटिश सेना की कमान संभाली थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेजर चार्ल्स नेपियर था, वो परोपकारी अंग्रेज जो लंबे समय तक उनके बीच रहा था और अब अपने सफ़ेद सूट बूट के बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य वर्दी में था और सिंधियों के खिलाफ कंपनी के सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। उन्नीसवीं सदी आधी गुजर चुकी थी और अंग्रेज करीब करीब पूरे भारत पर कब्जा कर चुके थे। जो इलाके अभी उनके कब्जे में नहीं थे उन पर कब्जा करने के लिए वो किसी बहाने की तलाश में रहते थे। सिंध पर हमले के लिए उन्होंने अपने सैनिकों पर सिंधियों के हमले को बहाना बनाया। उनका कहना था कि क्योंकि सिंध के लोगों ने ब्रिटिश राज के अधीन इलाकों पर हमला किया इसलिए वो सिंध पर कब्जा करके इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहते हैं। سندھو ندی کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے برٹش سرکار نے نیپیئر کو سر کا خطاب اور اس علاقے سے ہونے والی آمدنی میں سے 800,000 روپے کا انعام دیا۔ انگریزوں نے 1849 تک لگ بھگ پورے بھارت پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1850 کے دشک کی شروعات میں انہوں نے بچے ہوئے کچھ چھوٹے علاقوں کو بھی اپنے شاسن کی سیماؤں میں شامل کر لیا۔ انہیں علاقوں میں سے ایک تھا چھوٹا اور خوبصورت شہر میانی۔ 1853 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی سینا نے اس شہر کو گھیر لیا تھا۔ میانی شہر اونچی دیواروں سے گھرا ہوا تھا جس سے یہ ایک مضبوط محل جیسا دکھتا تھا۔ برٹش ادھیکاریوں کو امید تھی کہ پورے بھارت میں ان کی جیت دیکھنے کے بعد شہر کے لوگ ورودھ کرنا بند کر دیں گے اور شہر کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے، لیکن برٹش کمانڈروں کی امید کے وپریت شہر کے لوگوں نے کڑا ورودھ کیا اور جب بھی دشمن سینک دیوار کے پاس پہنچتے بھاری گولہ باری سے انہیں پیچھے دھکیل دیا جاتا تھا۔ برٹش توپ خانہ شہر کی مضبوط اور اونچی دیواروں کو نشٹ کرنے میں سکشم نہیں تھا۔ برٹش کمانڈر نے انے سینے چھاونیوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، لیکن مدد پہنچنے میں کئی دن لگ گئے جس کے لیے ان کے پاس کافی ماترا میں رسد نہیں تھی۔ شہر کے لوگوں کے سنگھرش نے انگریز سینا کے راستے میں بڑی بادھا ڈال دی تھی۔ ایک ادھیکاری ایک پرستاؤ لے کر سینا کے کمانڈر کے پاس گیا۔ اس نے پرستاؤ دیا کہ توپ خانے کو شہر کی دیوار سے کچھ دور پاس کی پہاڑیوں پر استھاپت کر دیا جائے اور شہر کے سندر اور پرانے محلوں کو نشانہ بنایا جائے۔ انہوں نے شہر کے لوگوں کو دھمکی دی کہ اگر ان کا سنگھرش جاری رہا تو کمپنی کی سینا کا توپ خانہ شہر کے ادویتی محلوں کو نشٹ کر دے گا۔ کمانڈر نے اس ادھیکاری کی پیشکش سویکار کر لی اور ترنت ایک سندیش شہر کے لوگوں کے پاس بھیجا۔ اس نے شہر واسیوں کو کمانڈر کی نئی دھمکی کے بارے میں سوچت کیا۔ شہر کے لوگوں کے پاس انگریزوں کو جواب دینے اور شہر کے اتہاسک اور ادویتی اسمارکوں کو بچانے کے لیے صرف ایک دن تھا۔ آخری منٹوں میں کہ جب انگریزوں کی سمے سیما ختم ہونے والی تھی، ایک دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر نکلا۔ وہ ویکتی سمے سماپت ہونے سے پہلے شہر کے لوگوں کے فیصلے کی خبر دینے کے لیے برٹش ادھیکاریوں کی اور تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ میانی کے لوگ اپنے ہتھیار زمین پر ڈالنے کے لیے تیار تھے تاکہ ان کے شہر کے اتہاسک اور سانسکرتک اسمارکوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ہندوستان پہنچنے کی شروعات سے ہی انگریزوں نے خود کو سبھی لوگوں کے روپ میں پرستت کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھارتیوں کو سبھیتا کے سدھانتوں سے پرچت کرانا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ بھارت کی سب سے قیمتی کلاتمک وراثتوں میں سے ایک کو نشٹ کرنے پر تلے ہوئے تھے اور اس سے بس کچھ ہی قدم دور تھے۔ انگریزوں نے باقی بھارتیوں کی طرح میانی کے لوگوں پر بھی اسبھیہ اور بربر ہونے کا آروپ لگایا، لیکن اپنی وراثت کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا کڑا پرتیروھ تیاگ دیا اور کلاتمک اوشیشوں کو سنرکشت کرنے کے لیے شہر کے دوار دشمن کے لیے کھول دیے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اب ہندوستان کے وشال اور سمردھ علاقے پر قبضہ کر چکی تھی۔ اس وشال کھیتر کو برٹش انڈیا کا نام دیا گیا۔ ہندوستان کے کچھ حصوں میں انگریزوں نے استھانیہ شاسکوں کو شرطوں اور پرتبندھوں کے ساتھ قائم رکھا۔ ظاہری طور پر یہ سرکاریں سوتنتر ہوتی تھیں، لیکن ان کے سمست کاریوں پر ایک انگریز ادھیکاری نظر رکھتا تھا جسے ریزیڈنٹ یا مقیم کہا جاتا تھا۔ انگریزوں کو ان کٹپتلی شاسکوں سے آسانی سے ملنے والا دھن ہی انہیں ستہ میں بنائے رکھنے کے لیے کافی تھا۔ انگریزوں نے میر جعفر نامک ویکتی کو بنگال راجیہ کا شاسک نیوکت کرنے کے لیے اس سے 40 ملین لیرا لیا۔ میر جعفر نے انگریزوں کے خلاف لڑنے والے بنگال کے شاسک کے ساتھ غداری کی تھی۔ انگریزوں نے اس غداری کے بدلے اسے ستہ سونپنے کا وعدہ کیا، لیکن کچھ سمے بعد انگریزوں نے میر کاظم نام کے ایک انیہ ویکتی سے 10 ملین لیرا لے کر ستہ اسے سونپ دی۔ 3 سال بعد انہوں نے میر جعفر سے 25 ملین لیرا کی رشوت لی اور اسے پھر سے سنگھاسن پر بٹھا دیا۔ اس کے 2 سال بعد انہوں نے نجم الدولہ نام کے ایک انیہ ویکتی سے 11 ملین لیرا لے لیا اور ستہ اسے سونپ دی۔ بھارت میں برٹش گورنر کمپنی کے خزانے میں یوگدان کے لیے استھانیہ شاسکوں سے پرتی ورش 250,000 لیرا وصول کرتا تھا۔ اس پیسے کے بدلے میں ان شاسکوں سے ان کے علاقے پر قبضہ نہیں کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کچھ سمے بعد اس نے ان میں سے پرتیک سے رشوت لی اور اسے اپنے ویکتیگت خزانے میں جمع کر دیا تاکہ इसे वार्षिक योगदान की राशि में शामिल नहीं किया जाए। इसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नर ने संधि तोड़कर इन राज्यों को भी ब्रिटिश राज्य में और ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिया। एक भारतीय राज्य के शासक ने अपने राज्य को ब्रिटिश कब्जे से बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 मिलियन लीरा का भुगतान किया। इसके लिए उसे अपनी माँ और दादी की संपत्ति को हड़पना पड़ा। अंग्रेज गवर्नर ने यह धन ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद हमला करके उस राज्य पर भी कब्जा कर लिया। फिर उसे 2,05,00,000 लीरे में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। अंग्रेजों ने शासकों से जो भी धन लूटा वो धन वो था जो भारतीय किसानों ने लगान के रूप में इन शासकों को दिया था। भारत के एक अन्य ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों के शासकों के परिवारों पर शोध करके पता लगाया कि 8 महत्वपूर्ण राज्यों के शासकों के पास उत्तराधिकारी बनने के लिए पुत्र नहीं है। उसके बाद उसने एक नोटिस जारी करके ऐलान किया कि जिस शासक का कोई वारिस या उत्तराधिकारी नहीं होगा उसकी मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति और राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होगा। कुछ समय बाद इन 8 राज्यों को कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों में जोड़ दिया गया। जो राज्य कंपनी को फिरौती देने के दबाव में नहीं आते थे उन्हें युद्ध की धमकी दी जाती थी। हालांकि लंदन में कंपनी के शेयरधारकों ने इस बात पर जोर दिया कि वे देश का विस्तार नहीं बल्कि कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। वे युद्ध पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थे। इसी कारण भारत में ब्रिटिश गवर्नर को अपने युद्धों का सारा खर्च भारत की जनता से लेना पड़ता था। युद्ध के वित्त पोषण के लिए अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से 50 से अधिक प्रकार के कर और लगान वसूले। उन्होंने प्रत्येक राज्य की भूमि किसानों को पट्टे पर दी और उनसे जो सबसे महत्वपूर्ण कर वसूला जाता था उसे नजराना कहा जाता था। नजराना काफ़ी ज़्यादा पैसा होता था जो प्रत्येक किसान को अपनी फसल की शुरुआत में अंग्रेजी शासन को देना पड़ता था। अंग्रेजों ने उन किसानों को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया था जो अपना लगान नहीं चुका सकते थे। वे इन पिंजरों को कड़ी गर्मी और चिलचिलाती धूप में रख देते थे। अपने हम वतनों की पीड़ा और दुखद मौतों को देखकर बाकी किसान किसी भी संभव तरीके से ब्रिटिश करों का भुगतान करने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि कुछ मौके पर उन्होंने लगान और भूमि कर चुकाने के लिए अपने बच्चों तक को बेच दिया। कई किसान जो स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे आत्महत्या कर लेते थे या अपना घर बार छोड़कर भाग जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत 1/3 से अधिक आबादी अपने गांवों से भाग गई थी और विस्थापित हो गई थी। इनमें से कई विस्थापित लोगों ने उन शहरों का रुख किया जहां अंग्रेजों ने कारखाने लगाए थे। वे अपनी पत्नियों और अपने बच्चों के साथ इन कारखानों में काम करते थे। इन कारखानों में विशेष रूप से कपड़ा कारखानों में या मजदूर न्यूनतम भोजन और कम से कम बुनियादी ज़रूरतों की आपूर्ति के बदले में काम करते थे। वे एक समूह के रूप में शहर में एक कमरा किराए पर लेते थे और बहुत ही विषम स्थिति में इस अंधेरे कमरे में जीवन गुजारते थे। इन विस्थापित किसानों का एक समूह अंग्रेजों द्वारा संचालित खदानों में भी काम करता था। इन खदानों में भारतीय महिलाएं भी पुरुषों के साथ काम करने के लिए मजबूर थीं। ये महिलाएं अपने बच्चों को अफीम खिलाकर गहरी और लंबी नींद सुला देती थीं ताकि खदान में लंबे समय तक और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। भारत पर कब्जे के दौरान अंग्रेज़ यूरोप और अमेरिका में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ युद्ध में व्यस्त रहे। इसलिए उनका मानना था कि भारतीयों को युद्ध की वजह से ये सभी कठोर परिस्थितियाँ सहन करनी चाहिए, ऐसे युद्धों के लिए जिनका भारतीयों से कोई लेना देना नहीं था। भारत में ब्रिटिश गवर्नरों में से एक लॉर्ड वेलेस्ली ने युद्ध के मैदान में एक सैनिक की डायरी नामक एक किताब लिखी। उन्होंने इस पुस्तक के एक भाग में लिखा, वे हमेशा हमारे सिरों पर मारते हैं और कहते हैं कि सम्मान और ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन ये खूबसूरत वाक्य स्कूल के बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। अगर कोई युद्ध के दौरान भी सम्मान चाहता है तो उसे अपनी तलवार नीचे रख देनी चाहिए।